जय गोपीजन वल्लभ यशोदानन्दन व्रजनन्दन यशोदानन्दन व्रजनन्दन Hare Rama, हर राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतहस्तवंदे सहज चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद आठवां अध्याय महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। अथ विश्व ईश विश्व आत्मन विश्व मूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशम इमं छिन्धि दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशं इमं छिन्धि दृढं पांडुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशं इमं छिन्धि दृढं पांडुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशं इमं छिन्धि दृढं पांडुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पांडुषु वृष्णिषु। विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशं इमं छिन्धि दृढं पांडुषु वृष्णिषु।
अथ विश्वेश विश्वात्मा
विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे
स्नेहपाशम इमं छिन्धि
स्नेहपाशम इमं छिन्धि दृढं पांडुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे भाषाम इमं चिन्धे दृढ़ं पाण्डुषु वृषेषु अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं चिन्धे दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु
माताजि
अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं चिन्धे दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं चिन्धे दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे अपाशम् इमं चिन्धे दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं चिन्धे दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं चिन्धे दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु
अथ ठीक है काफी समय अथ अतः विश्व ईश हे ब्रह्मांड के स्वामी विश्व आत्मन हे ब्रह्मांड की आत्मा विश्व मूर्ते हे विश्वरूप स्वकेशु मेरे स्वजनों में मैं मेरे स्नेह पाशम स्नेह बंधन को इमं इस छिंधे काट डालो दृढ़ कड़े पांडुषु पांडवों के लिए वृष्णिषु वृष्णियों के लिए भी अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मांड की आत्मा विश्वरूप कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। तात्पर्य भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में शर्माता है लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ वर मांगने पड़ते हैं, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि में से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थीं, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पाश को काट दें। पांडव उनके निजी पुत्र हैं और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य हैं। कृष्ण इन दोनों परिवारों के से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहें, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग लाभ से वंचित रह जाते। यह पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था, अतः उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपने भक्ति कार्यों का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं संस्कृत धनी सवर्ण जातियों के थे, लेकिन जनता के कल्याण के लिए वे अपने अपने सुखद घरों का त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में यह दृष्टांत प्रस्तुत किया। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रियतमा से स्नेह बंधन छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण भक्त राजा या जन नेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थीं और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को छिन्न करने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी शक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसलिए कभी कभी अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्णतया आश्रित कर बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। अनुवाद दोहराइएगा। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सात्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगन ललिता श्री विशाखान्विताश्च वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से पिछले श्लोकों में प्रार्थना कर चुकी हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि मात्र से ही सब कुछ प्रफुल्लित होता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। वो कह चुकी है न इयं शोभश्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत् अंकित पदैर स्वलक्षण विलक्षित है। कि आपके कृपा दृष्टि के वजह से और आपके चरण चरणों से अंकित हो गए हैं जो भूमि, उसकी वजह से सब कुछ अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और बाद में वो कहती है कि आपके दृष्टि की वजह से तब वीक्षित ही सब कुछ खेत जो है वो हरे भरे हो गए हैं, पेड़ जो है वो फलों से भर गए हैं और जितने भी नदियां हैं उनमें प्रचुर मात्रा में पानी है, धातु सब जगह मिल पहाड़ों में मिल जाते हैं, समुद्रों में मणियां वगैरह मोतियां मिल जाती हैं। तो ऐसे प्रकृति का जो सौंदर्य है ऐश्वर्य है वो केवल आपके दृष्टि मात्र से बढ़ रहा है। तो आपकी कृपा दृष्टि बहुत शक्तिशाली है, प्राण है सारे ब्रह्मांड का। तो इस श्लोक की शुरुआत वो अथ शब्द से करती है। तो आपकी कृपा दृष्टि से इतना कुछ हो पा रहा है और होता है अथ। अभी कुंती महारानी कहना चाहती है कि अब ये कृपा दृष्टि मेरे ऊपर करें, क्योंकि आप कोई बहुत कठिन काम, बहुत महत्वपूर्ण काम करना है और इस महत्वपूर्ण काम करने के लिए आप पूरी तरह से समर्थ हैं। इसलिए पहले ही कुंती महारानी भगवान कृष्ण को संबोधित करती हैं इन तीन शब्दों से, विश्व ईश्वर, सारे ब्रह्मांड के ईश्वर नियंता, विश्व आत्मन, सारे ब्रह्मांड के आत्मा, और विश्व मूर्ति, ब्रह्मांड के मूर्तिमान स्वरूप विश्व रूप। तो आप ये सब हैं तो अवश्य आप इस कठिन कार्य को करने के लिए पूरी तरह से समर्थ हैं। तो कौन सा कठिन कार्य है? स्नेह पाशम इमं छिंधी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। पांडु जो पांडव हैं और वृष्णि कुल के सदस्य हैं जो मेरे स्वजन हैं स्वकेशु, इनके प्रति मेरे हृदय में बहुत ही दृढ़ आसक्ति है। और ये आसक्ति कैसी है? स्नेह पाश, ये स्नेह की का एक डोर है या रस्सी है, बंधन है। छिंधी, इसको काट दिया, क्योंकि कुंती महारानी जानती हैं कि पारिवारिक जो स्नेह होता है, आसक्ति होती है, उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कुंती महारानी कहती है भगवान से, लेकिन आप तो ये सब है, विश्वात्मा है, विश्वेश है, विश्वमूर्ति है, और आपकी कृपा दृष्टि से मात्र प्रकृति खिल उठी है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप ये अवश्य कर सकते हैं कि इस पारिवारिक आसक्ति को आप कृपया काट दें। मेरे सगे संबंधी कौन है? पांडुषु वृष्णिषु। वैसे थोड़ा बहुत श्री कृष्ण के वंशावली के बारे में चर्चा करें, क्योंकि ये वृष्णि कौन है, पांडु कौन है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री कृष्ण के पिता हैं वसुदेव। वसुदेव जी की एक बहन थी कुंती, तो कुंती महारानी श्री कृष्ण की बुआ हुई। कुंती महारानी और वसुदेव दोनों के पिता शूरसेन थे। अब शूरसेन वृष्णि वंशी थे। वैसे यदुकुल में कई वृष्णि महाराज हुए हैं। एक वृष्णि महाराज तो मधु महाराज के पुत्र थे। महाराज यदु, जैसा आप जानते हैं, वो महाराज याति के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके कई भाई थे। महाराज यदु के कुल में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। यदुकुल नलिन दिनेश, हमारे जयदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री कमला कुछ मंडल है इस प्रार्थना। यदुकुल नलिन दिनेश, यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो महाराज यदु के एक पुत्र थे जिनका नाम था सहस्रजित। तो सहस्रजित के वंश में, कुल में एक राजा आए जिनका नाम था मधु, और मधु के पुत्र थे वृष्णि। तो ये एक वृष्णि हुए। इन राजा मधु के वजह से भगवान कृष्ण का नाम माधव कहलाता है। वैसे श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जब माधव शब्द से संबोधित किया जाता है तो इसके कई अर्थ होते हैं, कई कारण होते हैं। एक कारण यह है कि वो मधु राजा के वंश में आए। अन्य कारण यह है कि वो माधव, वो लक्ष्मी देवी के पति हैं। और एक कारण यह है कि मधु शब्द का अर्थ है वसंत ऋतु। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, अपने गवों के साथ वन में प्रवेश किया करते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था कि वसंत ऋतु अचानक प्रकट हो गया है। भले वो जाड़े का मौसम हो, भले गर्मी का मौसम हो, लेकिन जब श्री कृष्ण वन में प्रवेश करते थे तो वसंत ऋतु खिल उठता था वहां। तो वसंत ऋतु का और एक नाम मधु होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम माधव है। और एक कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण मधु रस या माधुर्य रस या श्रृंगार रस का आस्वादन करते हैं, इसलिए उनका नाम माधव है। तो खैर, ये राजा मधु जो सहस्रजित के वंश में आए, जो कि महाराज यदु के पुत्र थे, उनके पुत्र थे वृष्णि। ये एक वृष्णि राजा हुए। परंतु भगवान कृष्ण डायरेक्ट मधु या उस वृष्णि के वंश में नहीं आए। महाराज यदु के और एक पुत्र थे सहस्रजित के भाई, जिनका नाम था क्रोष्टा। तो महाराज क्रोष्टा के वंश में और एक महाराज वृष्णि आए, जिनके पीछे ये वृष्णि वंश नाम आता है। उनके वंश में और एक महाराज वृष्णि आए जो श्वफल्क महाराज के पिता थे। श्वफल्क महाराज कौन थे? एक भक्त हैं भगवान के, बहुत महत्वपूर्ण, जिनको श्वफल्क कहते हैं, अक्रूर जी। अक्रूर जी के पिता थे श्वफल्क, श्वफल्क के पिता थे वृष्णि। तो ये और एक वृष्णि महाराज है, और इस वृष्णि महाराज के भाई के वंश में श्री कृष्ण आए। तो इनके पीछे भी वृष्णि वंश का नाम नहीं है, लेकिन इस वृष्णि महाराज के जो पूर्वज थे वो महाराज वृष्णि, उनके कई भाई थे। उनमें से एक भाई का नाम था अंधक। तो अंधक महाराज के वंश में आए महाराज देवक और महाराज उग्रसेन। महाराज देवक और उग्रसेन दोनों भाई थे। तो देवक महाराज की पुत्री थी देवकी, और उग्रसेन महाराज के पुत्र थे कंस, इसलिए भाई बहन हो गए। तो अंधक महाराज, और अंधक महाराज के और एक भाई थे महाभोज। तो उनसे आया भोज वंश। तो अंधक, महाभोज, वृष्णि, ये सब भाई थे और भी कई भाई थे। तो इन महाराज वृष्णि के पीछे ये वृष्णि वंश नाम आता है। तो वृष्णि, अंधक, भोज इत्यादि ये सारे, इन सारे वंशों के जो राजा थे वो सब शूरसेन में महाराज उग्रसेन के अधीन रहा करते थे। सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंध में वर्णन करते हैं कि जब कंस ने अपने अत्याचार आरंभ किए तो ये सारे राजा जितने भी थे, जो अंधक वंश के, भोज वंश के और यदु वंश के, वृष्णि वंश के, वो सब इधर उधर भाग गए, अन्य राजाओं के अन्य राज्यों में आश्रय लेने लगे। क्योंकि जब कंस को पता चला कि पिछले जन्म में मैं कालनेमी नाम का असुर था और भगवान विष्णु ने मेरा वध किया था और इस समय सारे देवतागण जो हैं वो यदुवंश में जन्म ले चुके हैं, तो उनको यदुवंशियों के प्रति घृणा हो गई, इसलिए उन्होंने कंस ने अत्याचार शुरू कर दिए और सारे यदुवंशी सब इधर उधर भाग गए। तो ये वृष्णि वंश, अंधक वंश, भोज वंश, ये सब यदुवंशी हैं। तो भगवान कृष्ण और कुंती महारानी दोनों ही वृष्णि वंशी हैं। कुंती महारानी अपने पिता शूरसेन के माध्यम से वृष्णि वंश से जुड़ गई हैं और भगवान कृष्ण अपने पिता वसुदेव के माध्यम से जुड़ गए हैं। उधर पांडवों की वंशावली क्या है? महाराज यदु के कई भाई थे। महाराज यदु महाराज याति के सबसे बड़े पुत्र थे और उनके सबसे छोटे भाई का नाम था पुरु, जिन्होंने कि उनके पिता की इच्छा पूर्ण की। जब महाराज याति चाहते थे कि कोई मेरा यौवन, उसका यौवन मुझे दे दे और मेरी वृद्धावस्था ले ले, क्योंकि मुझे बहुत भोग करना है। उनके अन्य पुत्र तैयार नहीं हुए, परंतु वो सबसे जो छोटे पुत्र थे पुरु, वो तैयार हुए और इसलिए पुरु राजा जो है उनके वंश में कई महत्वपूर्ण राजा हुए, जैसे कि दुष्यंत, महाराज भरत, दुष्यंत के पुत्र भरत इत्यादि कई आए और फिर आगे चल के महाराज कुरु आए। इसलिए पांडवों को, कौरवों को कुरु कहते हैं। कौरव मतलब जो कुरु वंश में आने वाले हैं। वैसे पांडव भी कौरव हैं इस दृष्टि से कि वो सब कुरु वंशी हैं, लेकिन पांडवों और कौरवों में भेद करने के लिए उनको पांडु के पुत्र अर्थात पांडव कहते हैं। तो फिर इस महाराज कुरु के वंश में फिर पांडव आए और कौरव थे। तब भगवान कृष्ण और महारानी कुंती, हालांकि वृष्णि वंश ने दोनों ने जन्म लिया है, लेकिन उनका संबंध इस पांडु वंश से या कुरु वंश से भी हुआ। कुंती महारानी का संबंध कुरु वंश से कैसे हुआ? विवाह के माध्यम से। और वैसे भी उनके पूर्वज यदु महाराज पांडु महाराज के पूर्वज पुरु के भाई थे, तो उस दृष्टि से भी एक संबंध हुआ। और भगवान कृष्ण का संबंध कैसे हुआ? क्योंकि कुंती महारानी उनकी बुआ थी, तो पांडव जो है उनके भाई के बराबर भाई हो गए। तो ऐसे कुरु वंश और वृष्णि वंश दोनों में संबंध आ गया। तो श्रील प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि एक स्त्री को अपने पितृवंश या अपने पिता के वंश और अपने पति के वंश दोनों से स्नेह होता है, ये स्वाभाविक है। तो कुंती महारानी को भी कुरुवंश और कुरुवंश के जो में आने वाले उनके पुत्र पांडव और दूसरी ओर वृष्णि वंश, दोनों से स्नेह था। अब विडंबना ये थी कि कुंती महारानी कह रही है कि अगर आप हमारे साथ में नहीं रहेंगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, तो हम सबकी रक्षा के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा, विशेष करके मेरे पुत्रों के साथ रहना होगा। लेकिन कुंती महारानी सोच में पड़ गई कि अगर श्री कृष्ण पांडवों के साथ में रहेंगे, मेरे साथ में रहेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण के संग से जो मेरा पितृवंश है, वृष्णि वंश है, यदु वंश है, वो वंचित रह जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, दोनों से मेरा स्नेह है, मैं चाहती हूं कि श्री कृष्ण दोनों के साथ में रहें, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ रहेंगे तो उनका संग वहां नहीं मिलेगा, वहां रहेंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो कुंती राम महारानी ने विश्लेषण किया कि ठीक है, इसका कारण क्या है ये समस्या? समस्या का कारण ये है कि मुझे दोनों वंशों के प्रति आसक्ति है। तो अगर ये आसक्ति ही कट जाए तो समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि वो जानती थी भली भांति कि मेरे जीवन का उद्देश्य है श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होना, ये मेरे जीवन की परिपूर्णता है। परंतु मेरे स्वजन जो हैं स्वकेशु में पांडु और विष्णु वंश के लोग, उनके प्रति मेरी इतनी तीव्र आसक्ति होने के कारण ये मेरे कृष्ण के प्रति आसक्ति पैदा करने में बाधक हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि ये स्नेह पाश एकदम छिंदी दृढ़, इस दृढ़ स्नेह पाश को आप काट दें कृष्ण। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति मतलब श्री कृष्ण में तीव्र आसक्ति का को उत्पन्न करना। हम संसार के प्रति और कृष्ण के प्रति दोनों के प्रति एक साथ आसक्ति नहीं रख सकते मन में। मायावादी है वो कहते हैं कि हमें इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। आसक्ति से मुक्त होना संभव नहीं है, परंतु हमें आसक्ति को कहां केंद्रित करना है ये महत्वपूर्ण बात है। तो श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि या हम माया में आसक्ति रखें या श्री कृष्ण में रखें। तो आदर्श भक्त शुद्ध भक्त वो होता है जो इस संसार से अपनी आसक्ति को त्याग कर भगवान कृष्ण में आसक्ति को पूरी तरह से केंद्रित करें। तो कुंती महारानी यही चाहती है और यही आदर्श भक्त के लक्षण होते हैं कि वो चाहते हैं कि इस दुनिया में जो भी कुछ है जो कि बाधक वस्तु है हमारे श्री कृष्ण आसक्ति के प्रति, वो खंडित हो जाए, वो नष्ट हो जाए। यही वैदिक संस्कृति है जो कि धीरे 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 से हमें इस संसार से निरासक्त होने के लिए प्रेरित करती है। इसको वैराग्य कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी इसी वैराग्य युक्त भक्ति को प्रदान करने के लिए आए थे। जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण है। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां विधे यस्तम अहम प्रपद्ये। कि श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, भगवान श्री कृष्ण ने इस चैतन्य महाप्रभु का शरीर धारण किया है और कृपा के अम्बुधि कृपा के सागर बन के आए हैं। क्या प्रदान करने आए हैं सारे बद्ध जीवों को? वैराग्य, इस संसार से वैराग्य। दूसरी बात विद्या आध्यात्मिक ज्ञान, और तीसरी बात निज भक्ति योग अपने चरण कमलों के प्रति भक्ति या प्रेम। ये प्रदान करने के लिए, इस शिक्षा को देने के लिए यहां पर आए हैं। तो भक्ति के साथ साथ वैराग्य का अनुशीलन भी होना चाहिए। हालांकि ये सत्य है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है जनिष्यात वैराग्यम ज्ञानम चिन्हित अहितुकम, कि भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य खुद ब खुद पीछे पीछे आते हैं, ये तो सत्य है। परंतु भक्त को ये भी चाहिए कि वो इस दुनिया से निरासक्त होने का प्रयास भी करे। तो ये वैदिक संस्कृति में वैराग्य और भक्ति दोनों का अनुशीलन करने से अपने जीवन के अंत में व्यक्ति अच्छी तरह से अपना मन अपनी चेतना को भगवान कृष्ण के ऊपर केंद्रित कर सकता है। अन्यथा ये पारिवारिक आसक्ति जो है ये इतनी सख्त होती है, दृढ़ होती है कि अंत तक भी उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और मृत्यु के समय व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, पारिवारिक समस्याओं के बारे में चिंतन करते हुए प्राण को त्यागता है और पुनः उसको उसी परिवार में किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है। चाहे एक मनुष्य के रूप में हो चाहे कीड़े के रूप में उस घर में जन्म ले ले, परंतु उस पुराने परिवार से उसको संबंध बनाए रखना पड़ता है और संसार में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस पारिवारिक आसक्ति का मूल कारण है पुरुष और स्त्री का संबंध। जैसा कि महाराज ऋषभ देव श्रीमद भागवत में कहते हैं, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव एतम तयो मिथो हृदय ग्रंथि आहो अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तये जनस्य मोहोयम अहम ममेति। कि जब पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण हो जाता है, मिथुनी भावम ये मिथुनी भाव उत्पन्न हो जाता है, तो फिर क्या होता है, तयो मिथः दोनों के बीच में हृदय ग्रंथि, उनके दोनों के हृदय के बीच में गांठ निर्माण हो जाता है और ये गांठ बहुत सख्त होता है, इसको काटना बहुत कठिन होता है और इसका विस्तार होता है, विकास होता है। कैसे विस्तार होता है, अतः तत्पश्चात गृह, क्योंकि जब पुरुष और स्त्री एक साथ आते हैं तो अवश्य कोई गृह चाहिए और जब गृह होता है तो कुछ साधन चाहिए धन की उत्पत्ति के लिए, तो कोई क्षेत्र चाहिए खेती करने के लिए, कोई उत्पादन के लिए, कोई कारखाना चाहिए, कुछ तो चाहिए। फिर जब सब कुछ आ जाता है तो सुत बच्चे चाहिए, संतान चाहिए, और फिर बच्चों को अपने परिवार को साथ में लेकर को रिश्तेदारों को दिखाना चाहिए, देखो हमारे पास कितना अच्छा घर है वगैरह, तो आप रिश्तेदार, और इन सब का आनंद लेने के लिए वित्त ही वित्त चाहिए, हमें धन चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है प्राय मोह में पड़ जाता है, जनस्य मोहो यम अयम मम मम इति, अहम और मम इन दो मोह में पड़ जाता है, मैं और मेरा, ये परिवार मेरा है, ये मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा धन है, मेरा घर है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब नाटक है, हम सबको समझना चाहिए कि जैसे मंच पे जाकर हम अगर कोई भूमिका निभाएं कि मैं कि राजा हूं, मैं किसी का पति हूं या पत्नी हूं, ये सत्य नहीं है, केवल नाटक के दौरान ये सत्य है। वास्तव में जब नाटक समाप्त हो जाता है तो सब जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं सब अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये पारिवारिक संबंध व्यक्तियों को मोह में डाल देता है और व्यक्ति सोचने लगते हैं कि वास्तव में ये मेरे पति हैं, मेरे पत्नी हैं, मेरे बच्चे हैं, माता पिता इत्यादि हैं, और ऐसे मोह बंधन से ये पारिवारिक आसक्ति की उत्पत्ति होती है जो कि कृष्ण भक्ति में बहुत बाधक हो जाता है। पारिवारिक आसक्ति का और एक खतरा ये है, वो व्यक्ति को कृपण बना देता है, उसकी दृष्टि को बहुत कम कर देता है। वैसे व्यक्ति को चाहिए कि उसका हृदय उदार हो, वो सबको सारे प्राणियों को अपने हृदय में समा ले। लेकिन पारिवारिक आसक्ति जब तीव्र हो जाती है तो व्यक्ति केवल स्वार्थी होता है, केवल अपने कुटुंब के लिए हित के लिए कार्य करता है, मैं और मेरा कुटुंब। लेकिन जब उसकी चेतना का विस्तार होता है तो वो सोचने लगता है नहीं, इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, मेरे समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे देश के लिए कुछ करना चाहिए, मनुष्य समाज के लिए कुछ करना चाहिए, फिर प्राणियों के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन इस चेतना के विकास की सीमा या परिपूर्णता यह है कि वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में उसकी चेतना को केंद्रित करे, तब जाकर उसका हृदय वास्तव में उदार हो जाएगा। ये कहावत आप सबने सुनी होगी, अयम निजः परो वित्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। ये वसुधैव कुटुंबकम् ये शब्द सब लोग जानते हैं, इसका मतलब क्या है, ये मेरे ख्याल से हितोपदेश से है या कोई नीति शास्त्र से है। अयम निजः ये मेरा है, परह व्यक्ति ये उनका है, ये व्यक्ति ये ज्ञान ये जो भावना है कि ये मेरा है वो उनका है, लघु चेतसा। ये कौन सोचता है जिसकी चेतना बहुत लघु है, बहुत छोटी है। छोटे दिल वाले लोग ऐसे सोचते हैं, ये सब मेरा है, ये उनका है, भेदभाव करते हैं, नहीं समझते हैं कि ये सब कुछ कृष्ण का है। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। वसुधा ये श्री ये पृथ्वी का और एक नाम है जो सारे ऐश्वर्यों को धारण करती है। तो ये वसुधा, ये सारा पृथ्वी जो है, ये एक कुटुंब है। हम सब श्री कृष्ण के बच्चे हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब भाई बहन हैं और हम सबको मिलकर श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो ये भेदभाव क्यों कि ये मेरा समाज है, मेरा प्रांत है, मेरा देश है। ऐसे हम बंधन बना देते हैं, हम दीवारें खड़ी कर देते हैं, कृत्रिम दीवारें, और फिर एक दूसरे से झगड़ते हैं। तो सारी समस्याएं इन चीजों से उत्पन्न होती हैं। तो ब्रह्मा जी यहां तात्पर्य में कहते हैं कि समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने में योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। अगर हमें अच्छा भक्त भी बनना है तो अपने दृष्टि को विस्तृत करना है, अर्थात केवल अपने परिवार के सदस्यों को अपने लिए प्रिय नहीं बनाना है, सभी से हमको प्रेम करना है। और प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि कोई जिम्मेदारी का पद अगर हमें स्वीकार करना है, जैसे एक राजा है या ब्राह्मण है, कोई जन नेता है, या भगवत भक्त भी अगर हमें होना है, इस सिद्धांत का पालन हमें करना चाहिए। और श्री प्रभुपाद उदाहरण भी देते हैं शरद गोस्वामियों का कि उन्होंने अपने ऊंचे कुल को त्याग दिया और वो साधारण वैरागी बने वृंदावन में आकर। किस लिए? अन्यों के भलाई के लिए, अन्यों का उद्धार करने के लिए जो भगवान को भूल चुके हैं। और शरद गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों में चल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु का संन्यास, ये ऐसा संन्यास शायद इतिहास में कभी हुआ नहीं है और न भविष्य में शायद ऐसा हो पाएगा। चैतन्य महाप्रभु के पास सबसे सुंदर महिला थी पत्नी के रूप में, उनकी मां का स्नेह अतुलनीय था, उनके पास उनके मित्र थे, इतने प्रेमी मित्र थे, बड़े विद्वान थे वो, सब जगह उनका नाम था, वो प्रसिद्ध थे, सभी लोगों को सम्मान दिया करते थे। लेकिन ऐसे सारे ऐश्वर्य को, ऐसे सुविधाओं को उन्होंने त्याग दिया केवल संसार के हित के लिए। उसी प्रकार से प्रभु रामचंद्र ने भी एक आदर्श दिखलाया कि एक राजा के लिए क्या उचित है। अगर अपने महारानी के प्रति आसक्ति एक बाधक वस्तु हो रही है राजा के कर्तव्य को निभाने के लिए, तो उस आसक्ति को काट देना चाहिए। कई बार प्रभु रामचंद्र ने ये कर दिखाया। रामायण में हम पढ़ते हैं, वैदिक इतिहास में ऐसे कई उदाहरण पाए जाते हैं जहां राजाओं ने अपने पुत्रों को त्याग दिया। इसके विपरीत ऐसे भी उदाहरण देखे जाते हैं कि जहां वो राजा ऐसे नहीं कर पाए तो सारे वंश का विध्वंस हो गया। उदाहरण धृतराष्ट्र। हम पारिवारिक आसक्ति की बात कर रहे हैं ना, यहां पर कुंती महारानी का विषय यही है। धृतराष्ट्र महाराज के पारिवारिक आसक्ति की वजह से कितने करोड़ों करोड़ों लोगों की हत्या हो गई, एक व्यक्ति के आसक्ति की वजह से। राम गोविंद महाराज कल दुष्पुत्र से पहले कह रहे थे, अगर धृतराष्ट्र एक बार केवल कहते कुरुक्षेत्र में जब दोनों सेनाएं एकत्र हो गई थी, एक बार भी दिल्ली में हस्तिनापुर में बैठे हुए जो कहते कि युद्ध बंद कर तो बंद हो जाता, फिर भी वो नहीं कह पाए, इतनी तीव्र उनकी आसक्ति थी। सबने प्रयास किया, विदुर ने, भीष्म ने, श्री कृष्ण ने भी प्रयास किया, व्यासदेव ने प्रयास किया, लेकिन वो पारिवारिक आसक्ति छिन्न नहीं हो पाई। और उसकी वजह से देखिए परिणाम क्या हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र कृपण हो गए थे इस पारिवारिक आसक्ति की वजह से। उन्होंने अन्याय किया पांडवों के प्रति, उनकी दृष्टि बहुत छोटी हो गई, लघु चेतसाम, मेरे बच्चों को सब मिलना चाहिए और जो पांडवों का अधिकार है उनको नहीं मिलना चाहिए। इस वजह से उत्पात हो गया। तो जब इस जगत में लोगों का हृदय बड़ा हो जाता है तो सभी सुखी रह सकते हैं। जब सबका हृदय छोटा हो जाता है, जनस्य मोहोऽयम अहम् मेति, अहम् और मम, मैं और मेरा, तब दुनिया में उत्पात हो जाता है। एक बार मुझे याद है कि एक कई साल पहले की बात है, भारत के एक मंत्री थे तो भ्रष्टाचार के कोई कार्य में पकड़े गए थे, आरोप लगाया होता, क्या मंत्री कभी पकड़े नहीं जाते, केवल आरोप लगाया जाता है। तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि ऐसे आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने आपके स्वजनों के प्रति कुछ भ्रष्टाचार किया है, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी हैं, कतार के बाहर उनको कुछ पेट्रोल पंप वगैरह दिए हैं, तो क्या ये सही है? तो मंत्री ने उत्तर दिया, अरे मैं मेरे रिश्तेदारों के लिए नहीं करूंगा तो क्या आपके रिश्तेदारों के लिए करूंगा? मतलब ये एक निश्चित बात है कि कोई ऐसे मंत्री बन जाए तो करना ही चाहिए उसको रिश्तेदारों के लिए कुछ ना कुछ, नहीं तो क्या मतलब है नेता बनने का। तो ऐसे नेता ऐसे मंत्री सब हैं, इसलिए ये दशा है समाज की। तो अगर हमें अपने भी भलाई करनी है और विश्व का भला करना है, क्योंकि हमारा आंदोलन है, तो कृष्ण भक्ति का विकास करने के लिए ये उदारता हृदय का होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पारिवारिक जीवन में व्यक्ति को कठोर रहना चाहिए, पत्थर का हृदय बना के रखना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। परंतु दृष्टि ये होनी चाहिए कि वास्तव में ये मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे इत्यादि नहीं है, ये सब कृष्ण की संपत्ति है, मैं केवल एक निमित्त हूं। और निरासक्त होकर हमारे भक्ति के कार्यों को हमें करना चाहिए। हम कई बार सुन चुके हैं भागवत पाठ में भी कि श्री कृष्ण कैसे अपने पारिवारिक जीवन में बिल्कुल निरासक्त थे, हालांकि उनकी पटरानियां जो इतनी सुंदर थीं, साक्षात लक्ष्मी देवी थीं, फिर भी उनका मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ उनके सौंदर्य से। वो अपने दैनिक कर्तव्यों से तनिक भी हटे नहीं कभी भी, रोज सुबह सुबह प्रातः काल में उठकर उनकी दिनचर्या आरंभ होती थी, दान देना, यज्ञ करना, ध्यान में बैठना, जो भी एक गृहस्थ के लिए, क्षत्रिय के लिए आवश्यक थे वो कार्य उन्होंने कर दिए। तो इसलिए ऐसे कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि मैं एक अबला स्त्री हूं तो मेरे लिए ये पारिवारिक स्नेह को काटना बहुत ही मुश्किल है, मैं अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही हूं इस कार्य को करने के लिए, लेकिन आप विश्वेश हैं, विश्वात्मन हैं, विश्वमूर्ति हैं, इसलिए आप इस कार्य को कर पाएंगे। तो ऐसे कृपा कीजिए, स्नेह पाशम इमं छिन्धि दृढ़ पांडुष, इस स्नेह को काट डालिए ताकि मैं आपके प्रति केवल आसक्त रह पाऊं। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं।
हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारी आसक्ति किसी वस्तु से हट जाए। भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र के समय में देखिए धृतराष्ट्र की शक्ति दुर्योधन से ही हट रही थी, तो
प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति वहां थी, फिर भी धृतराष्ट्र की आसक्ति कम क्यों नहीं हुई अपने पुत्र के प्रति? ये हम सबकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर है किस तरह हमारे स्वेच्छा का उपयोग हमें करना है। भगवान के होते हुए भी शिशुपाल के मन में द्वेष कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। हम सबकी वृत्ति कैसी है वो सब संघ के ऊपर निर्भर होता है, जैसा संग वैसा रंग। क्योंकि धृतराष्ट्र हमेशा दुर्योधन का संग करते रहे और दुर्योधन भी है वो शकुनी दुशासन ऐसे लोगों का संग करते रहे तो वृत्ति बदली नहीं। संग का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सही संग में हम सदैव रहें तो ये वृत्ति बदल सकती है। और कोई टीका प्रश्न? हाँ जी, हाँ जी। श्री कृष्ण की सेवा क्या अभिप्राय है? अर्थ है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये है अभिप्राय। भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना, उनके बारे में बोलना, उनके बारे में स्मरण करना, उनकी आराधना करना, वंदना करना, ऐसे कई नवधा भक्ति है। वैष्णव के संग में रहकर इस नवधा भक्ति का पालन करना, यह है कृष्ण की सेवा। ठीक, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गोप्यमानंदे
प्रभु की जय।